कॉलेज कैंटीन। दोपहर का वक्त था। चारों तरफ शोर, हंसी, प्लेटों की आवाजें और दोस्तों के ग्रुप्स की चहल पहल। लेकिन उस भीड़ के बीच एक कोना ऐसा था जहां माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। आर्यन, विशाल, रम्या और अदिति एक टेबल पर बैठे थे। अदिति की बात के बाद कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। सब गड़बड़ हो चुका है। उसके ये शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। आर्यन ने आगे झुकते हुए पूछा, अदिति, साफ साफ बोलो, क्या हुआ है? अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें नीचे झुक गईं, जैसे वो खुद भी ये सब कहते हुए असहज हो। मुझे सूत्रों के हवाले से, हवेली से खबर मिली है, उसने धीरे धीरे कहा। विशाल ने तुरंत टोका, कौन सी खबर? अदिति ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, फिर थोड़ा और करीब झुककर बोली, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। क्या? उसके हाथ अपने आप केबल पर कस गए। और, अदिति ने बात पूरी की, उन्होंने एक जिद पकड़ ली है। कौन सी जिद? रम्या ने बेचैनी से पूछा। अदिति ने सीधा आर्यन की आंखों में देखा। वो चाहती हैं कि अक्षरा ही इस घर की बहू बने। टेबल पर जैसे सन्नाटा गिर गया। आर्यन कुछ सेकंड तक बिना पलक छपकाए उसे देखता रहा। और पापा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ था। अदिति ने सिर हिलाया, उन्होंने मान भी लिया है। ये सुनते ही विशाल ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। क्या बकवास है ये? पास बैठे कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन इस टेबल पर बैठे चारों को अब किसी की परवाह नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? रम्या ने कहा। इतना कुछ होने के बाद भी? अदिति चुप रही। आर्यन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। बाकी सब? उसने पूछा। सब परेशान हैं, अदिति ने कहा। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। सबको लग रहा है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार खामोशी ज्यादा भारी थी। अचानक विशाल ने अपनी नजरें अदिति पर टिकाईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अदिति, उसने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अदिति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर उस दिन तुमने वो सब नहीं किया होता, विशाल ने बिना रुके कहा, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रम्या ने भी धीरे से सिर हिलाया। भैया सही कह रहे हैं। अदिति का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। होंठ हल्के से कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। तभी आर्यन अचानक अपनी जगह से उठा। उसने बिना कुछ कहे अदिति को अपनी तरफ खींच लिया और उसे हल्के से गले लगा लिया। ओए, उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी स्वीट वाइफ को ऐसे डांट रहे हो तुम लोग? विशाल और रम्या दोनों एकदम चौंक गए। अरे भाई, आर्यन ने हंसते हुए कहा, इससे कुछ मत कहो। उसने अदिति को थोड़ा दूर करते हुए उसकी तरफ देखा, क्योंकि इसे तो मैं कहूंगा। अदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्यन ने नकली गुस्से वाला चेहरा बनाया। अदिति, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक सेकंड के लिए सन्नाटा, और फिर रम्या के मुंह से हंसी निकल गई। विशाल भी हंस पड़ा। ड्रामा बंद कर यार। अदिति कुछ पल तक आर्यन को देखती रही, फिर उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में जो नमी थी वो थोड़ी हल्की पड़ गई। आर्यन ने उसके सिर पर हल्का सा नॉक किया। इतना सीरियस मत हुआ कर, वरना तेरे ये न्यूज बुलेटिन और डरावने लगने लगेंगे। वेरी फनी, अदिति ने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी भारीपन नहीं था। माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जो बात सामने आई थी वो मजाक नहीं थी। आर्यन वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और इस बार उसकी आवाज पूरी तरह गंभीर थी। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये सिचुएशन सही नहीं है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। अगर दादी इस हालत में है, वो बोला, और उन्होंने ये जिद पकड़ ली है, तो पापा का मानना स्वाभाविक है। लेकिन अक्षरा, रम्या ने कहा, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं वो? आर्यन की आंखों में हल्की सख्ती आई। शायद पापा को अभी पूरा सच नहीं पता, विशाल ने तुरंत कहा, या फिर वो सब जानते हुए भी कुछ और सोच रहे हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मतलब? विशाल थोड़ा आगे झुका। मतलब हो सकता है मामा जी को शक हो, लेकिन वो कुछ बड़ा पकड़ने के लिए चुप हों। ये सुनकर तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। अदिति ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो हवेली में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रम्या ने घबरा कर कहा, और हम यहाँ बैठे हैं? आर्यन की नजरें अब टेबल पर टिक गईं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। नहीं, उसने धीरे से कहा, हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं करेंगे। तीनों ने उसकी तरफ देखा। हमें हवेली जाना होगा। अभी? अदिति ने पूछा। हाँ अभी, आर्यन ने बिना सोचे कहा। जितना देर करेंगे उतना ही चीजें और बिगड़ेंगी। विशाल ने सिर हिलाया। मैं साथ हूँ। सेम हियर, रम्या ने तुरंत कहा। अदिति कुछ पल चुप रही, फिर उसने भी धीरे से कहा, मैं भी। आर्यन ने तीनों को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, तो तय रहा। वो खड़ा हुआ, आज ही हवेली चलते हैं।
टेबल पर रखे ग्लास प्लेटें और अधूरी बातें वहीं छूट गईं, लेकिन चारों के चेहरों पर अब एक ही चीज थी, फैसला। क्योंकि अब ये सिर्फ एक फैमिली मैटर नहीं रहा था, ये एक खेल बन चुका था जहां हर चाल किसी की जिंदगी बदल सकती थी। कैंटीन के बाहर निकलते ही चारों रुक गए। विशाल ने माथे पर हाथ घेरते हुए कहा, लेकिन यार आर्यन एक प्रॉब्लम है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? तुम और अदिति? विशाल थोड़ा रुक कर बोला, तुम दोनों को तो हवेली से निकाल दिया गया है, ऐसे कैसे जाओगे? एक पल के लिए सब चुप हो गए। अदिति की नजरें नीचे झुक गईं, जैसे उसे वही डर पहले से था। तभी रम्या आगे आई। ओए प्लीज, इतना भी ड्रामा मत करो तुम लोग, तीनों उसकी तरफ देखने लगे। रम्या ने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा, एक बार मिलने तो चल ही सकते हैं, आखिर फैमिली है हमारी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, और मुझे पूरा विश्वास है मामा कुछ नहीं कहेंगे। आर्यन ने उसे गौर से देखा, इतना यकीन? रम्या ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि वो सख्त हैं, लेकिन दिल से गलत नहीं है। अदिति ने धीरे से आर्यन की तरफ देखा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। कुछ पल के लिए खामोशी रही, फिर विशाल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और अगले कदम के लिए तैयार हो गए।